हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करिश्मा जी के कहने पर अमन तारा को अंदर कमरे में ले गया था। आज अमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा खुश था और बार बार तारा को प्यार किया जा रहा था और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को जी भर कर प्यार करने लगे थे। उन दोनों के कपड़े वहीं बराबर में पड़े हुए थे, लेकिन आज वो दोनों अपनी खुशी को अपने अपने सिरे से सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो तारा ने भी कोई आनाकानी नहीं की थी और जल्द ही दोनों एक बार फिर प्रेम भाव से मिलने लगे थे। जब दोनों थक हार कर लेट गए तब अमन आसानी से सो चुका था, लेकिन आज तारा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वो अपने बच्चों के बारे में सोच जा रही थी और अपने पेट पर हाथ फेरने लगी थी, और अभी वो पेट पर हाथ फेर ही रही थी कि तभी उसे खुद के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी थी। तारा परी को ऐसा लग रहा था मानो उसका बच्चा अंदर से ही बोल रहा था, माँ माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप आराम कर लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे ही तारा ने ये एहसास हुआ उसे और ज्यादा खुशी हो गई थी और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तारा परी को हैरानी हो रही थी कि उसे ऐसा एहसास क्यों हुआ था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी उसके पेट में जो बच्चा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, और इस बच्चे के लिए न जाने उसने अब तक इस पृथ्वी लोक पर क्या क्या सहा था। वेल, तारा ने बहुत ही प्यार से अपने पेट को सहला दिया था और मन ही मन सोचने लगी थी, बहुत सता लिया तुमने मुझे पापी राक्षस, अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा अंत होगा। तूने मेरा पिछला जन्म भी बर्बाद किया था और तूने मेरा ये जन्म भी बर्बाद किया है, लेकिन अब इस जन्म को ठीक किए बिना मैं नहीं मरूंगी। तारा ने मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए कुछ सोचा था और फिर जल्दी ही वो नींद के आगोश में सो गई थी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा की आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद नहीं थी। विक्रांत रंधावा की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं, केवल उसकी आंखों में डार्क डार्क अंधेरा था। क्योंकि वो राक्षस का अंश था तो उसके अंदर भी बेशुमार शक्तियां थीं, और वो केवल यही सोच जा रहा था कि वो किस तरह से उसे बच्चों को खत्म करेगा, क्योंकि वो कुछ भी करेगा लेकिन उन बच्चों को मार कर रहेगा। वो अच्छी तरह से जानता था वो बच्चा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तारा और उसके बीच सबसे बड़ी रुकावट है, और वो तारा और अपने बीच किसी को भी नहीं देखना चाहता था। जब तारा और अमन दोनों गहरी नींद में थे तब विक्रांत रंधावा उनके कमरे में आ गया था। उसके पास इतनी सारी अनगिनत शक्तियां थी कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनके कमरे में आसानी से आ गया था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। जैसे ही उसने तारा को देखा, तारा का चेहरा खूबसूरत चांद की चांदनी में एकदम निखर रहा था, क्योंकि तारा के कमरे की जो खिड़की थी उससे आई हुई हल्की हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अमन का एक हाथ तारा के पेट पर था और वो उसकी ओर मुंह करके गहरी नींद में सोया हुआ था। तारा का भी एक हाथ अमन के हाथ के ऊपर रखा हुआ था और वो भी सोई हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उस चांदनी में निखर कर आ रही थी। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने तारा को उसी तरह से देखा, उसे तारा का पिछला जन्म दिखाई देने लगा था, जब वो उसे अघोरी से मिलने के लिए सफ़ेद कपड़ों में उसके साथ गई थी और चांद की चांदनी में नहाई हुई वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसी वक्त विक्रांत रंधावा का पूरा जिस्म अकड़ गया था, उसे तारा की शिद्दत महसूस होने लगी थी, वो बस तारा को छूना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। अगर एक बार तारा का और उसका मिलन हो जाता है तो उसे तारा के पेट में जो बच्चा है वो तो मर ही जाएगा, साथ ही साथ तारा हमेशा हमेशा के लिए उस राक्षस की हो जाएगी, ये तय था। और ये बात विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से जानता था, तो इसलिए उसकी नज़र तक सिर्फ और सिर्फ तारा के खूबसूरत जिस्म पर थी। विक्रांत रंधावा तारा के एकदम बहुत करीब चला गया था और वो उसे ऊपर से नीचे तक सूंघने लगा था। हालांकि अमन का हाथ जो कि तारा के पेट पर रखा हुआ था वो उसे बहुत ही ज्यादा जहर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था अगर उसने अमन का हाथ वहां से हटाने की कोशिश की तो उन दोनों में से किसी न किसी की आंख खुल सकती है और वो उठ सकते हैं। अभी विक्रांत रंधावा किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता था, इसीलिए वो दूर से ही तारा को स्मेल करने लगा था। और जैसे ही वो तारा के टांगों से होता हुआ उसके मुंह तक उसे स्मेल करता हुआ गया, अचानक से तारा को एहसास हो गया था कि कोई उसके बहुत ही करीब है, और तारा ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली थी। जैसे ही तारा ने अपनी आंखें खोली, उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि तारा की आंखें खोलते ही विक्रांत रंधावा एक धुएं की तरह गायब हो चुका था। विक्रांत रंधावा एकदम से ही काले धुएं में बदल गया था, और वो तारा के कमरे की जो खिड़की थी उसके रास्ते से अपने कमरे में पहुंच चुका था। क्योंकि अब ऑलरेडी दिन निकल चुका था, तो तारा ने अब सोने की कोशिश नहीं की और वो अमन की ओर देखने लगी थी। अमन सोता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे ही तारा को कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो याद आया, अचानक से उसके गाल एकदम से लाल होने लगे थे और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। तारा बहुत ही प्यार से अमन के पास गई थी और उसने उसके माथे पर उसे किस कर दिया था। जैसे ही तारा ने अमन को किस किया, अमन ने भी अपनी आंखें खोल ली थी और उसने जाती हुई तारा का एकदम से हाथ पकड़ लिया था और अपनी ओर खींच लिया था, और एक बार फिर से अपने होठों को उसके होठों की गिरफ्त में लेकर चूमने लगा था। तारा का जिस्म, तारा की खूबसूरती, तारा का एहसास अमन की कमजोरी बनता जा रहा था, साथ ही साथ अमन का जुनून भी। अमन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तारा की तरफ उठती हुई एक भी उंगली वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब क्योंकि तारा पर पार्टी में हमला हुआ था, तो ये बात भी वो आसानी से नहीं जाने देने वाला था। इसीलिए उसने पार्टी की सारी रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली थी, साथ ही साथ उसने गोल्डन पैलेस जाकर वहां के वेटर से पूछताछ करने के बारे में भी सोच लिया था। क्योंकि अब तारा ठीक थी और वो घर उसके साथ थी, तो अमन अब आसानी से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता था। जल्द ही वो लोग एक दूसरे को प्यार करने के बाद एक साथ शॉवर लेकर नीचे आ गए थे। उन्होंने देखा विक्रांत और करिश्मा जी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विक्रांत की नजर आज फिर तारा के ऊपर गई, उसके गर्दन, गर्दन पर, गालों पर, उसके बाजू पर पड़े छोटे छोटे लव बाइट्स पर उसकी निगाह गई, तो उसका तन बदन फूकने लगा था। वहीं करिश्मा जी तारा के लव बाइट्स को देखकर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि उन लव बाइट्स की ही देन थी कि करिश्मा जी जल्दी ही दादी बनने वाली थी। उन्हें पूरा यकीन था उसका अमन और तारा का बच्चा जब पैदा होगा तो वो अपने दादाजी यानी कि करिश्मा जी के पति को जरूर ढूंढ कर लेगा, क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। उसके अंदर असीमित शक्तियां होगी जो कुछ भी करने की ताकत रखता होगा। अभी करिश्मा जी को पूरी तरह से तारा का ध्यान रखना था। करिश्मा जी ने आज तारा परी के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए थे। नाश्ते में दुनिया भर का सामान मौजूद था। जैसे ही तारा ने इतना बड़ा दस्तरखान देखा तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी रह गई थी, और उसने करिश्मा जी से कहा था, ये क्या मॉम, आज आपने पूरे शहर का ही नाश्ता बना दिया क्या? इस पर करिश्मा की मुस्कुराने लगी थी
और बोली थी, बेटा मेरा बस चलता तो मैं इस पूरी दुनिया की एक से एक तमाम बढ़कर स्वादिष्ट डिशेस यहाँ पर पेश कर देती। तुम नहीं जानती तुमने मेरी जिंदगी की मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा जी एक बार फिर से इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक अमन को ये याद आ गया था कि एक औरत ने उन्हें फोन किया था और उसे बताया था कि करिश्मा जी हर रात हर दिन कहीं जाती है, तो अमन को याद आते हैं। अमन सोचने लगा था कि क्या किया जाए, क्या मॉम से सीधे सीधे पूछ लिया जाए, लेकिन कुछ सोचकर अमन ने खुद को रोक लिया और सोचने लगा था कहीं मॉम को उसकी बात बुरी न लग जाए। मॉम ये सोचेंगी कि मैं उन पर शक कर रहा हूँ, पहले मुझे इस बात की सच्चाई खुद ही पता लगानी होगी। कुछ सोचकर अमन चुप हो गया था और मन की बात मन के अंदर ही दबा गया था। तब तारा ने कहा था, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर हम ऑफिस के लिए चलते हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन और करिश्मा जी दोनों के मुंह से निकला था, नहीं, आज के बाद आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप सारा दिन आराम से घर बैठकर आराम करोगे, अब कोई काम आप नहीं करोगी। जैसे ही तारा ने ये सुना वो हैरानी से उन दोनों की ओर देखने लगी थी, लेकिन तारा का तो ऑफिस जाना जरूरी था, क्योंकि अगर तारा ऑफिस नहीं जाएगी तो वो उस मलिका और काली शक्तियों की मालिक अमित पर कैसे नजर रख पाएगी और उनका कैसे पर्दाफाश कर पाएगी। तारा के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अमित और मल्लिका का पर्दाफाश करना था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी जब तक ये काली शक्तियाँ अमन के आसपास रहेंगी वो अमन को चैन और सुकून से नहीं रहने देगी। और उसे विजुअल्स भी तो आया था कि वो कहीं अंधेरे में है और अमन उसे आवाज लगा रहा था, तो उसे विजुअल की सच्चाई भी उसे पता करनी थी। तब तारा ने कहा था, नहीं नहीं अमन सर, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी, मेरा यहाँ घर बैठे मन नहीं लगेगा, और वैसे भी आपने तो मुझे पूरे ऑफिस का हेड बना दिया है, तो मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ सब लोगों से काम ही तो करवाना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आराम से लेट कर बैठ कर भी तो काम करवा सकती हूँ, मैं तो बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तारा ने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहा था। तभी अचानक, प्रणाम।